आरव आयु के साथ होटल में अपने स्वीट में था और इस वक्त दोनों बेड में एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थी। आयु को नींद आ चुकी थी जबकि आरव आंखें बंद किए हुए ऐसे ही लेटा हुआ था। रात के लगभग 10 बजे के करीब ज्ञानजी ने डिनर के लिए आयु के मोबाइल पर कॉल किया। आयु सो रही थी इसलिए आरव ने कॉल रिसीव किया तो सामने से ज्ञानजी ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों को गए हुए 4 घंटे बीत गए हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दोनों बच्चे तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। हस्बैंड मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को लेकर केयरलेस हो जाओगे तुम। दादू मैं आरव बोल रहा हूँ, आरव ने जवाब दिया। वो आयु सो रही है, मैं आ रहा हूँ बच्चों को लेने के लिए। ज्ञानजी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम्हारे आने से क्या मतलब हुआ? उसे डिनर नहीं करना क्या? और मुझे उससे बात करनी है। उसे नींद से जगाओ और बोलो कि अपने स्वीट में पहुँचे। मैं हम सब के लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम दोनों के पास आधे घंटे का टाइम है। इतना कहकर ज्ञानजी ने कॉल कट कर दिया। आरव ने आयु का मोबाइल साइड में रखा और फिर उसकी तरफ देखा जो कि वाकई काफ़ी गहरी नींद में थी। आरव ने आयु को जगाने के लिए उसे कमर से लिफ्ट करके अपने पास खींचा। आरव धीरे धीरे अपने हाथ आयु की बैक पर घुमा रहा था ताकि उसे गुदगुदी महसूस हो। आयु फिर भी नहीं उठी तो आरव ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, लगता है अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा। बोलते हुए उसने आयु को लेटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। वो आयु के गर्दन पर काफ़ी हार्डली किस कर रहा था और किस करने के बाद उसने ज़ोर से बाइट किया जिससे आयु के मुंह से आह निकली और उसकी नींद भी खुल गई थी। आँख खुलते ही आयु ने आरव के कंधे पर ज़ोर से मारते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम, ये कौन सा तरीका हुआ जगाने का? प्यार से नहीं उठा सकते थे क्या? बोलते हुए आयु अपनी गर्दन रब कर रही थी। मैं तो पहले प्यार से ही उठा रहा था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया तो सोचा थोड़ा और हार्डली प्यार करता हूँ, आरव ने कंधे उचकाकर कहा और फिर आयु के ऊपर से खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपने कपड़े लिए और शर्ट पहनते हुए बोला, जल्दी से खुद को सही कर लो और बाहर पहुंचो। दादू का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि डिनर के लिए हमें तुम्हारी स्वीट में पहुंचना है, बच्चे भी तुम्हें मिस कर रहे थे। आरव के कहते ही आयु को बच्चों का ख्याल आया। उसने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, हद है यार, बच्चों के बारे में तुम्हें भूल ही गई थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मुझसे दूर रहा करो मिस्टर खुराना। ये तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मिसेस खुराना, आरव ने सिर हिलाकर कहा और आयु को फिर से अपने करीब खींच लिया। वो आयु की एम्बर आइज में देखते हुए बोला, अब मुझे किसी भी चीज़ में कोई देरी नहीं करनी है, मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वहाँ तुम्हें बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बच्चे अकेले हैं, फिर तुम्हारा सारा टाइम मेरा। तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे आरव, और मेरे दादू का क्या? मैंने प्रॉमिस किया है मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, आयु ने सीधे सीधे कहा। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तुम उन्हें छोड़ो, मैं बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुंबई चलने का कह रहा हूँ, फिर हम लंदन चलेंगे। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ बैलेंस करके चलूँगा, आरव ने जवाब दिया, जिस पर आयु ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद आयु आरव के पास से उठने को हुई लेकिन आरव ने उसे अपने करीब कर लिया और फिर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। आरव की हरकतें वैसे भी आयु के लिए अनएक्सपेक्टेड होती थीं, वो उसे काफ़ी इंटेंसली किस कर रहा था। कुछ देर के बाद दोनों अलग हो गए। आरव ने उठकर आयु को उसके कपड़े दिए और फिर वो बाथरूम में चला गया। आरव के जाने के बाद भी आयु के फेस पर हल्की स्माइल थी। कुछ देर पहले उनके बीच जो स्पेशल मोमेंट क्रिएट हुआ था उसे सोचकर आयु के गाल लाल हो रहे थे। आरव ने आयु को तैयार होने का कहा था लेकिन वो बाथरूम से बाहर आया तब भी आयु मुस्कुराते हुए चुपचाप वहीं पर बैठी थी। उसे देखकर आरव ने सिर हिलाकर कहा, तुम तो ऐसे ब्लश कर रही हो जैसे सब कुछ पहली बार हो, मुझे याद नहीं आ रहा तब भी तुमने ब्लश किया था या। आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आयु ने उसकी तरफ तकिया फेंक कर मारा। तुम ना मेरे इमोशंस को स्पॉइल कर दिया करो, आयु ने चिढ़ते हुए कहा और फिर वहां से उठ गई। थोड़ी देर बाद आरव और आयु ज्ञानजी के पास पहुंचे। जैसे ही दोनों बच्चों ने आयु को देखा वो दौड़कर उसके गले लग गए। उनके ऐसा करने पर आरव ने आर्या की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, कुछ जल्दी ही पार्टी नहीं बदल ली तुमने। आरिशा का मैं समझ सकता हूँ कि वो मुझसे अभी मिली है लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते। लगता है तुम्हारी मॉम और आरिशा को वापस लंदन भेजना पड़ेगा। आरव ने ये सब मजाकिया तरीके से कहा था लेकिन आर्या ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया। वो तुरंत नामे सिरी लाकर बोला, फिर ठीक है मैं भी मॉम और आरिशा के साथ चला जाऊंगा, आप अकेले रह लेना माहिरा आंटी के साथ। अचानक आर्या के मुंह से माहिरा का नाम सुनकर आयु ने गुस्से से आरव की तरफ देखा। आरव ने आयु से कहा, अरे ये तो बच्चा है, तुम क्या इसकी बातें सुन रही हो? मैं कब माहिरा के साथ रहता हूँ जो तुमने ऐसा कहा आर्या? बोलते हुए आरव ने आर्या की तरफ देखा। पर वो तो बार बार घर पर आती रहती है ना आपके पास, तभी आपने मॉम को नहीं ढूंढा ना, आर्या बोला। आरव ने जल्दी से आर्या को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा बहुत मुश्किल से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, तुम क्यों फिर से आग लगा रहे हो? आर्या से बात करते हुए आरव की नज़र ज्ञानजी पर गई जो मुस्कुराते हुए उनकी बहस को इंजॉय कर रहे थे। आरव ने ज्ञानजी से कहा, दादू दिस इज़ नॉट फेयर, आप हमारी फाइट को इंजॉय कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। खाना आने वाला है तो दोनों तैयार रहो, और मैं इन दोनों शैतान बच्चों के साथ नहीं सोने वाला। अपने बच्चों को खुद संभालो, इतनी देर में मेरी नाक में दम कर दिया इन्होंने, ज्ञान जी ने मुंह बनाकर कहा। कुछ ही देर में उनका डिनर आ चुका था, जिसे वो साथ में कर रहे थे। डिनर के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद ज्ञान जी आरव के स्वीट में सोने के लिए चले गए थे, जबकि आयू, आरव और दोनों बच्चे आयू के स्वीट में थे। आरव सोने के लिए बेड पर पहुंचा तो उसने देखा दोनों बच्चे पहले ही आयू के इर्द गिर्द सोए हुए थे। आयू ने आरव के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हुए कंधे उचका दिए। मजबूरन आरव को आयू से दूर आरिशा के पास सोना पड़ा। अगली सुबह जैसा कि आरव ने कहा था, उन सबकी मुंबई के लिए फ्लाइट थी, ज्ञान जी भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। दूसरी तरफ खुराना मैंशन में गौरवी जी ने सारी तैयारी करवा ली थी। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि आरव आयू और आरिशा को लेकर आ रहा है। गौरवी जी ने जानबूझकर माहिरा को भी बुलाया था, ताकि अपने सामने आयू को देखकर वो आरव के लाइफ से खुद ही दूर चली जाए। गौरवी जी ने जानबूझकर माहिरा को भी बुलाया था ताकि आरव और आयू को साथ देखकर वो आरव का पीछा छोड़ दे। हालांकि माहिरा घर की डेकोरेशन में कोई हेल्प नहीं कर रही थी, वो बस एक कोने में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और उन सबको देख रही थी। माहिरा की थोड़ी दूर अयान और साक्षी थे, जो आपस में बातें कर रहे थे। माहिरा उनकी बातें गौर से सुन रही थी।
साक्षी ने अयान से कहा, आखिर कौन आ रहा है जिसके लिए दादी इतनी तैयारी करवा रही हैं, और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मुझे प्रेपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम बात तो देना, ये सस्पेंस मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। काम करते हुए साक्षी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टक कर रखा था। साक्षी की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, पर आप मुझे ऐसे बहुत क्यूट लग रही हो, मैंने आपको कभी इतना बेचैन पहले नहीं देखा जितना आज आप दादी के सस्पेंस की वजह से हो रही हैं। मैं तो इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, पूछूँ मैं दादी से जाकर? छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं रायशा से ही पूछ लेती हूँ, साक्षी ने सिर हिलाकर कहा और फिर रायशा की तरफ देखा, जो अभी अभी वहाँ पर आई थी। रायशा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम अच्छे खासे जमा लिए थे, वो अब एक टॉप की एक्ट्रेस थी। साक्षी रायशा को कुछ पूछ पाती उससे पहले वो उसके पास आकर बोली, भाभी आखिर चल क्या रहा है? यहाँ मैं अपनी शूटिंग छोड़कर आई हूँ, दादी ने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है, मुझे लगा उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो कुछ और ही चल रहा है। रायशा को भी कुछ नहीं पता था। ये देखकर आयान ने हंसकर कहा, लो इसे भी कुछ नहीं पता, आपको लगा आप इससे सब कुछ पूछ लेंगी? बोलते हुए आयान का ध्यान माहिरा की तरफ गया, तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब हमें नहीं पता तो दादी इसे क्या बताएगी? वैसे दुश्मनों को भी यहाँ इन्वाइट किया गया है, ये मुझे नहीं पता था। उसकी बात सुनकर माहिरा ने मुंह बना लिया। कुछ ही देर में कबीर और युवानी भी पहुंच चुके थे, उनके साथ में उनका 2 साल का बेटा वीर था। उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो सब आपस में अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे। अयान ने कबीर से कहा, मुझे लगा तुम्हें कुछ पता होगा, भाई तो तुमसे सारी बातें शेयर करते हैं, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? कबीर को वहां देखकर माहिरा भी उनके पास आ गई। उसने कबीर से पूछा, मेरी 2 दिन पहले आरव से बात हुई थी और उसने ऐसा कुछ नहीं बताया जिसका सेलिब्रेशन दादी इस तरह से रखें, क्या कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है? कबीर ने जवाब में कहा, कंपनी की हालत काफ़ी अच्छी है और प्रोजेक्ट भी मिलते रहते हैं, इसलिए दादी के लिए ये सेलिब्रेशन की बात नहीं हो सकती, ज़रूर कुछ पर्सनल रीज़न है। वो सब बातें कर रहे थे तभी गौरवी जी वहाँ आई। वो सबको काम में लगा कर गई थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा सब काम करने के बजाय आपस में ही बातें कर रहे हैं, तो वो तेज़ और सख्त आवाज़ में बोली, लो जी हो गया काम, यहाँ तो सब गॉसिप करने में लगे हुए हैं, पहले पता होता तो किसी इवेंट मैनेजमेंट टीम से बात कर लेती, सोचा पर्सनल सेलिब्रेशन है तो घर वाले ही मैनेज कर लेंगे। हाँ दादी का बस चलता तो वो आज पार्टी रख लेती, अयान ने धीरे से कहा, जिस पर गौरवी जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। गौरवी जी के गुस्सा करने पर सब वापस काम पर लग चुके थे। वहां से वापस किचन एरिया की तरफ जाते हुए गौरवी जी ने माहिरा के चेहरे की तरफ देखा, जो कन्फ्यूजन से उनकी तरफ देख रही थी। गौरवी जी ने माहिरा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, आज के सेलिब्रेशन की मेन गेस्ट तो तुम ही हो माहिरा लूथरा, मेरी बहू के जाने के बाद बहुत ख्वाब देखे थे तुमने मेरे आरव की जिंदगी में आने के, अब तुम्हें अपनी औकात अच्छे से पता चल जाएगी, वो बस कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। बोलते हुए गौरवी जी ने घड़ी में टाइम देखा। वहीं दूसरी तरफ आयू और आरव फ्लाइट मुंबई में लैंड कर चुकी थी। सिक्योरिटी चेक के बाद वो सब गाड़ी में थे। उसने आरव से कहा, मेरे पेरेंट्स की तरह दादी भी मुझसे नाराज होगी ना, कहीं वो भी उनकी तरह मुझे घर से ना निकाल दे। आरव मुझे अपने बच्चों से अब दूर नहीं होना है और ना ही तुमसे। दादी तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, तुम मत घबराओ, मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया था इस वजह से वो मुझसे जरूर गुस्सा हुई थी और यही चाहती थी कि मैं तुम्हें ढूंढकर वापस ले आऊं। अपनी ये नर्वसनेस अपनी फैमिली के लिए बचाकर रखो, मेरी दादी ऐसी नहीं है, आरव ने आयू को तसल्ली देते हुए कहा। आयू ने फिर बैक सीट पर बैठे ज्ञान जी की तरफ देखा तो ज्ञान जी बोले, तुम बेवजह घबरा रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर इसकी दादी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया मैं उनसे निपट लूंगा। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी दादी कोई हिटलर हो,
आरव ने सिर हिलाकर कहा। आयु ने आगे कुछ नहीं कहा, वो खुराना मेंशन पहुंच चुके थे। आयु गाड़ी के बाहर नहीं निकल रही थी। वो आरव से बोली, पहले तुम जाकर सब कुछ बता दो दादी को, उसके बाद ही मैं अंदर आऊंगी, वो भी उनका मूड ठीक होने पर। तुम ये पागल जैसी बातें करना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने दादी को पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, और क्यों तुम पर गुस्सा करेगी? अब चुपचाप बाहर आओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी गोद में उठाकर मुझे सबके सामने ले जाना पड़े, आरव ने चिढ़ते हुए कहा। आरव ने आयु की बाजू को पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आया। यहाँ आने से पहले आरव ने आयु के लिए शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला। हमेशा की तरह आरिशा और आयु ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट और पिंक कलर की फ्लोरल फ्रॉक जो घुटनों तक की थी। आरव ने आरव को तो आयु ने आरिशा को गोद में उठा रखा था। आरव आयु का हाथ पकड़कर खुराना मेंशन की सेकंड एंट्रेंस पर पहुंचा। उनके साथ क्यान जी भी थे। आरव ने घर की डोरबेल बजाई तो गौरवी जी पूजा की थाली के साथ बाहर आईं। उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली भी थी, जो उनके अजीब बर्ताव पर हैरान थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने आरव आयु के साथ खड़ा था और आयु के हाथ में आयु और आरव की बच्ची थी। उसकी आंखें और चेहरा देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो आरव की ही बेटी है। जहां बाकी फैमिली आरव के साथ आयु और उसकी बच्ची को देखकर खुश होने के साथ हैरान भी थे, तो वहीं माहिरा का चेहरा उतर गया था। उसका यही मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त आयु और उसकी बच्ची की जान ले ले।